लेकिन कुछ बातें ऐसी, जैसे मान लीजिए कोई गायक है, गान जानता है, ढोलक बजा है, तो और कारण से उसको
आज सब दूसरे लोग था तो स्वामी तो बदलता रहता है और सबका बदल गया, यहां तक ना ही नहीं बदलते हैं, उनकी भी आई दिखती। भगवान नारायण एक भगवान, उसी उनका पुराण पुरुष था, आदि पुरुष, और स्वयं उनका कोई अनादि कहते हैं उनको, वो सबके कारण है इसलिए आदि पुरुष है, सबकी शुरुआत, और उनकी शुरुआत कोई नहीं इसलिए अनादि है। आदि राधिर गोविंद सर्व कारण कारण, स्वयं अनादि है पर सब सबके कारण है, कारण कारण। तो कालिए ने ऐसे भगवान का स्मरण किया और वह समझ गया कि हमारे प्रभु नारायण ही अवतार लेकर के हमारा दमन कर रहे हैं, और वह इसलिए आ गया को समझ गया कि मुझे इस तरह से परास्त करने वाला भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है, नहीं खेल खेल में इस तरह से मुझे परास्त कर देना सामान्य बात नहीं थी, इसलिए उसे भगवान का स्मरण आया, और पहले से भक्त था इसलिए उस विपत्ति में संकट में उसे भगवान का स्मरण आया। ये भक्त का स्वभाव है, विपत्ति पड़ती है तो वह भगवान का स्मरण कर। जब द्रौपदी का वस्त्र हो रहा था तो द्रौपदी ने उस दिन याद किया, उसके गुरु वशिष्ठ जी ने बताया था कि बेटी जब भी बहुत बड़ी विपत्ति पड़े तो भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। तो उस समय उसे उसने कृष्ण को पुकारा, उसकी लाज बच गई। तो काली अंततः भगवान की शरण लिया, नारायणम तमरणम शरणम जगामा, नारायण की शरण ली। तो भगवान श्री कृष्ण को या विष्णु को नारायण, संस्कृत में नर शब्द का अर्थ होता है जीव, और नार का है जीव समूह, जीव के समूह को, झुंड को नार कहते हैं, और अयन माने आश्रय घर, समस्त जीवों के आश्रय हैं भगवान, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। सबको जन्म दिए हैं और सबको पुष रहे हैं, इस संसार में आप देख रहे हैं अनंत कोटि जीव हैं, और जीवों को जिलाने के लिए पूरे बहुत बड़ा, तो जीवों को भी उन्होंने जन्म दिया, शरीर बना, और शरीर से भोगे जाने लायक जितनी वस्तुएं हैं वो भी सब भगवान बनाए हैं, सबका पोषण वही कर रहे हैं, सबको जन्म दे रहे हैं, पोष रहे हैं, पाल रहे हैं, इसलिए उनको नारायण कहते हैं, समस्त जीव उनके आश्रय में। और नार का अर्थ भी होता है जल में हम करते हैं इसलिए उनको नारायण कहते हैं, लेकिन वास्तव में नारायण शब्द का अर्थ होता है कि सबके आश्रय, सबका पालन पोषण करने वाले। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में भगवान श्री कृष्ण से यह बात कही है, नारायण स्तम नहीं, नारायण आप इसलिए नहीं है कि जल में शयन करते हैं, आप नारायण इसलिए है कि समस्त जीवों का पालन करते हैं। तो मैं भी एक जीव हूं, तो मैं कोई गलती की, आपका बछड़ा चुराया, सखाओं को चुराया, तो मैं ऐसा हूं जैसे कोई बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है, और बच्चा यदि हाथ पैर पीटे तो माँ उसको अपराध नहीं मानती है, है बच्चा गर्भ में है तो कभी हाथ पैर चलाता है तो माँ उस पर क्रोधित होती है कि बच्चा ठीक से है, जी रहा है, ये है वो सुनता होती। तो वेद भी कहते हैं, सभी जानते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से, मैं आपके नाभि से जन्म, नाभि कमल से, मैं आपका पुत्र हूं, मैं गलत दिया, मैं गलती कर सकता, मेरा यही भाव है कि मैं गलत करूंगा, और आपका स्वभाव है कि आप क्षमा करेंगे ये ब्रह्मा जी युक्ति लगा रहे हैं भगवान से। तो उसी समय कहते हैं कि आप नारायण हैं, समस्त जीवों के पालक हैं, जन्मदाता हैं, इसलिए हमारे अपराध को आप क्षमा करें। तो नारायण शब्द का जब उच्चारण किया जाता है तो हमें भगवान की समझना चाहिए, हम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ऐसा नहीं कि किसी को भी बस नारायण कह दो, खास करके जो दीनहीन है उनको और ज्यादा नारायण कह दे, आप बताइए जो दीनहीन है उनको दरिद्र नारायण कह, नारायण कभी दरिद्र नहीं है, वो लक्ष्मी पति है कि नहीं,
नारायण
हाँ नारायण करना पड़े तो आप भगवान का नाम आना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए तो नारायण दास है तो नारायण नहीं, वो तो अपना पालन भी नहीं कर सकता है, अनंत को तो जीवों का पालन करना तो बहुत दूर की बात है कि नहीं। तो कहीं किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वास्तव में उसका सेंस समझना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग कभी भूल कर नहीं करना चाहिए। किसी गरीब को या किसी को नारायण कह देना यह अपराध है, भगवान नहीं कहा जा सकता। या आदर में किसी किसी को भगवान कह दिया जाता है, आइए भगवान बैठिए, कहां से आसन आया, क्या आया, तो आदर में बोल रहे हैं। जैसे हम लोगों को लोग कहते हैं महाराज, आइए महाराज बैठिए सन्यासी को, लेकिन महाराज का अर्थ होता है द ग्रेट किंग, बहुत बड़ा राजा है। तो हम किस स्टेट के किंग हैं, त्रिदम स्टेट के किंग है, यही है। लेकिन एक पूजा के अर्थ में, उपचार के अर्थ में आदर के लिए महाराज कर लिया जाता है ना, नहीं तो महाराज क्या है, साधारण राज भी नहीं है, महाराज तो दूर की बात। तो जैसे हम लोग महाराज कहा जाता है तो हम लोग भूल कर कभी नहीं मानते हैं कि हम वास्तव में राजा हैं, पर भी राज कहाँ कर रहे हैं, इंद्रियों के वश में है। मैं अपनी स्थिति कह रहा हूँ, सबकी नहीं, तो इंद्रियों के वश में है, लेकिन फिर भी लोग महाराज कहते हैं। लोगों के पास कोई मीटर तो है नहीं कि हम नाप लिए कि मैं इंद्रियों को हरा दिया हूँ। किसी भी सन्यासी को महाराज कहेंगे, है कि नहीं, भले वो इंद्रिय का दास हो चाहे इंद्रियों को दास बना चुका हो, लेकिन यह वास्तव में एक आदर किया जाता है, आदर के लिए। तो इसी तरह से किसी को कभी भगवान, गुरु को भगवान कहा जाता है या और किसी को, तो वह केवल आदर के लिए, न कि वह साक्षात गुरु भगवान हो गए, ऐसी बात नहीं। नारायण नारायण है, वो अलग है सबसे, सबसे विलक्षण। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था पटना में, भगवत सप्ताह था, बहुत लोग जुटे थे, 3-4 हजार आदमी, तो मैं यह वाक्य कह दिया कि गुरु जो है वो भगवान का भगवान नहीं है। तो इसी पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया बीच का, वो लगा एक श्लोक कहने की, गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरु नमः, ये क्यों कहा गया। तो लगा हमसे पूछने ये क्यों कहा गया, मुझे कथा बीच में रोकनी पड़ी, मैं स्वयं पूछा कि आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो कहा इसका अर्थ तो क्लियर है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात भगवान कृष्ण है, परब्रह्म है। मैं कहा आप इसको मानते हैं, हो भगवत क्यों लिखा गया तो क्यों नहीं मानते हैं। तो मैं कहा कि ये तो संसार में हजारों गुरु हैं, ये सबके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश सब भरे हुए हैं ना, मान लीजिए किसी के घर में गुरु गया तो उस घर में ब्रह्मा जी गए थे और विष्णु भी गए थे, महेश्वर शिव जी गए थे, साक्षात परब्रह्म भी घूम रहे हैं, तो भगवान के लाखों अवतार हुए ही हो रहे हैं इस समय हैं। आप समझते हैं कि मान लीजिए आपके घर में आपका गुरु आया और मानते हैं विष्णु जी आ गए थे या ब्रह्मा जी आ गए थे हमारे घर में, तो कहते नहीं नहीं ऐसा कब नहीं मानते हैं, लेकिन लिखा क्यों गया। वो पूछता है ऐसा क्यों लिखा गया, तो मैं बताया कि वास्तव में आदर करने के लिए लिखा गया है, न कि गुरु ब्रह्मा है और गुरु विष्णु है और गुरु महेश्वर है, एक भी गुण मिला करके देखो है, ब्रह्मा जी इस विचित्र विश्व की सृष्टि किए हैं, अद्भुत सृष्टि किए हैं, शरीर के भीतर आत्मा को डाल करके शरीर चला रहे, कीट पतंग पशु पक्षी देवता सबकी रचना किए, गुरु क्या रचना किया है, एक शरीर बना सकता है, कुछ कर सकता है, अपना जूता फट जाए तो नहीं सी सकनी कला मालूम है, क्या सृष्टि करेगा, किस माने में वो ब्रह्मा है जरा बताओ ना, विषय में तुलना किया जाए उसकी ब्रह्मा जी से, और भगवान विष्णु सारे का पालन करते हैं, वो किसका पालन करता है, अपना पालन नहीं कर सकता, भले ही हवा में सांस लेता है, उनका बनाया हुआ अन्न खाता है, वो क्या करेगा पालन, और क्या संहार कर सकता है, एक आदमी की जान मार दे तो 20 साल जेल में चला जाएगा वो महेश, अब जरा बताइए किस विषय में भगवान शिव है, पर ब्रह्म है ये है वो, तब मैं पूछा जब इस तरह से कह रहा था तो कहा तो क्यों लिखा गया बार बार यही कह रहा था क्यों लिखा गया था गया है ठीक, लेकिन उसे समझना चाहिए ठीक से ना, समझना चाहिए उसको केवल आदर करने के लिए है, न कि हम हूँ बहुत समझना कि बस मेरा गुरु ब्रह्मा जी है और शिव जी है और भगवान विष्णु है पर ब्रह्म है बस हो गया। ये समझना बहुत भारी गलती है, लोगों को समझ नहीं असल में आज के युग में, उस शब्दों को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या कह रहा है। मैं उदाहरण दिया कि आप अपने पुत्र पर क्रोधित हो गए किसी कारण से और रंज होकर के कह दिए एक बार ये टोटल गधा है, तो दूसरा आदमी सुनेगा तो कहेगा भाई इसके पिताजी कह रहे हैं कि गधा है, हम तो समझते थे कि आदमी है, तो लगे देखने कि नहीं इसका पैर गधा जैसा नहीं है, इसका खुर ऐसा नहीं है, कान ऐसा नहीं है, इसके पिताजी क्यों ऐसी बात कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो कोई कहेगा नहीं नहीं वो गधा नहीं कहे, तो वो कह सकते नहीं उन्होंने कहा कि बिल्कुल गधा है बिल्कुल गधा का मतलब है कि तो पिता की आज्ञा नहीं मान रहा है, आलसी है, यही अर्थ हुआ ना, यह पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, इतना ही अर्थ है। यह नहीं कि उसका आकार स्वभाव सब गधे का हो गया। इसी तरह से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर का यही अर्थ है, सेंस है उसका समझना चाहिए, वो पूज्य है आदरणीय है, बस इतना ही अर्थ है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी है और शिव जी है, गुरु तो लोक में घूमते रहते हैं, मान लीजिए गुरु किसी के घर में गया तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए उस दिन और फिर भी संसार में इतनी चोरी है और चर दुख है, जबकि रोज ब्रह्मा विष्णु महेश घर घर घूमते ही रहते, पधरावनी चलती रहती और फिर भी दुख तो लोग समझते नहीं इस तरह से। वास्तव में भगवान के गुणों का जब वर्णन करना हो तो अन्य सबसे विलक्षण करना चाहिए, कोई भी किसी भी माने में भगवान के समान नहीं है। नवत समस्याभ्यधिक अकुतन्य, अर्जुन कहते हैं नवत समस्याभ्यधिक अकुतन्य, आपके समान तो कोई है ही नहीं, आपसे अधिक क्या हो सकता है, कोई नहीं है आपके। लोकत्रय प्रतिमो प्रभाव, तीनों लोक में आपका प्रभाव अतुल्य है, किसी भी विषय में आपके समान कोई नहीं है, ये भगवान का प्रभाव है। तो कालिए स्मरण कर रहा है नारायण का और विशेषता दे रहे हैं कि चराचर गुरु, चराणाम गुरु गुम अचराणाम गुरु, अचर जैसे वृक्ष आदि हैं, पर्वत आदि, ये जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं, देखना अचर वृक्ष भरे पड़े घास, और चर जैसे हम लोग हैं, देवता पक्षी पशु आदि, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं, इन सबके पिता कृष्ण। यह गुरु का अर्थ है जन्मदाता। श्रीमद् भागवतम में गुरु शब्द का सब समय अर्थ शिक्षा देने वाला ही नहीं होता है, जन्म देने वाला पोषने वाला भी गुरु है, माता पिता को गुरु कहा गया, तो सबके जन्मदाता है, गुरु है, सबके हितोपदेशता है, सबको ज्ञान देते हैं भगवान नारायण। तो ऐसे नारायण की शरण में गया, मन ही मन शरण लिया कि हे नारायण हे कृष्ण अब हमें बचाइए। अब भगसने का इरादा चला गया, शान टूट गई उसकी। तो इस मूड में जब हुआ तो उसी समय उसकी स्त्रियों ने देखा उसकी दशा को, बहुत रोने लगे उसकी स्त्रियां कि हाय पति नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे। कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसं पार्ष्णी प्रहार परिरुग्ण फाशस्रम दृष्ट्वा हि मादे दुर्मुष्य पत्न्या आर्ता अश्लथत भूषण भूषण आर्ता अश्लथत वसन भूषण केश बंधा। गर्भ जगतः कृष्णस्य, गर्भ जगतः ये बता रहे हैं जिनके भीतर सारा जगत है, वे कृष्ण उसके मस्तक पर नाच रहे हैं। केवल दो चार क्विंटल सिर पर कोई लेकर के किसी पर कूदे तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी, पूरे विश्व का भार अपने भीतर लेकर के भगवान उसको मार रहे थे। और से अति भर अवसन्न, अतिशय भार के कारण आक्रांत था काली, उठाने में समर्थ नहीं हो रहा था, इतना भार था। इस भार के कारण और पार्श्विक प्रहार भगवान के ईड़ी के मार से, पार्श्विक का पैर पैर में भी ईड़ी से मार रहे थे। जब आदमी कहीं किसी को मारता है तो ईड़ी से आता है, तो उससे परिरुग्र फाण सहस्र, उससे हजारों फाण ध्वस्त हो गए। तो इस दशा में अपने पति पति को देख करके उसकी स्त्रियां बहुत दुखी हो गई और भगवान की शरण में आई। उस समय उनके वसन भूषण और केश बंध ढीले हो रहे थे, मतलब व्याकुल हो गए। कोई व्यक्ति जब शोक में होता है तो वस्त्र नहीं संभाल पाता है, केश खुल जाता है, गहने भी हो जाते हैं, तो वो हाहाकार करते ही भगवान की शरण में आए। मन सोथ पुरस्कृत भा कायम निभाय भुवि भूत पति प्रणेम साध्य कृतांजलि पुटा शमलस्य भर्तुर मोक्षेप सवह सरदम शरणं प्रपन्नः। तो काली के लिए लिखा गया वो भगवान की शरण में आया, अब काली की पत्नियां भगवान की शरण में आ रही, लेकिन वो मन से शरण में आया, भगवान से प्रार्थना नहीं किया। अभी श्री कृष्ण को सिर पर लिए लिए ऐसे है, मरने की हालत में है, स्त्रियां आकर के भगवान से क्षमा कराने लगे। अथवा अनंतरम सुविघ्न मन से पति के मरण की शंका से अतिशय दुखित हो गई, भयभीत हो गया जिनका मन आई, नाग पत्नियां पुरस्कृतार्धा पुरस्कृता अग्रे निधापिता अर्धा बालका है जाधिका, अपने अपने बच्चों को आगे करके कोई गोद में ली थी, कोई बच्चे को आगे की थी, जितनी थी अपने अपने बच्चे को आगे करके भगवान कृष्ण के सामने आए। नाग पत्नियां या नाग समर्थ होते हैं उस लोग के, वो देवता के रूप में भी हो जाते हैं, मनुष्य के रूप में हो जाते हैं, उनका नीचे का जो अंग होता है सर्प के रूप में होता है, और ऊपर चाहे तो बिल्कुल सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होती है। सर्प के रूप में विनय नहीं कर रही है, हाथ जोड़ी है, बिल्कुल नाग देवताओं की एक जाति है, वो देवता था काली है। लेकिन उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो सर्प के रूप में रहते हैं या देवता के रूप में घूमते हैं, उसमें भी घूम सकते हैं। आई अपने बच्चों को आगे करके, ता साध्य साध्य का अर्थ पति परायणा, जितनी भी काली पत्नियां थी सभी पति भक्त थी, पति परायणा पतिव्रता थी। तो भर्तु समलस्य मोक्ष, अपने स्वामी के अपराध को समाप्त करने के उद्देश्य से भगवान से माफी कराने के लिए कृतांजलि पुटा, कृत अंजलि पुटा, हाथ जोर जोर करके शरणदम आश्रय देने वाले भूत पति समस्त प्राणियों के पालक भगवान श्री कृष्ण के शरणम प्रपन्ना शरण में आए। श्री कृष्ण को यहां भूत पति, भूत का अर्थ जीव, सुहृदम सर्वभूताना। संस्कृत के बहुत से शब्द ऐसे हैं जो लोक में लोग उनका दूसरा अर्थ करते हैं, लोक में कोई भूत शब्द सुने भूत पेट करेगा, जैसे यही शिव के लिए आ जाए भूतेश्वर या भूतनाथ, तो उसका वास्तव में अर्थ होगा घोष्ट में, भगवान शिव के लिए वही अर्थ होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए हम भूतपति शब्द का अर्थ जीव पति, और पति माने पालक, सब तरह से जीवों के पोषक पालक भगवान है। जब सभी भगवान शरण में गए हुए का क्यों नहीं पालन करेंगे, जो शरण में नहीं है उन सबका पालन कृष्ण करते हैं। तो यहां भाव यह है कि जो समस्त जीव के सामान्य रूप से पोषक हैं, ऐसे प्रभु की शरण में गए ये जरूर पालन करेंगे। शरणम प्रपन्ना, शरण में जाकर के भूई कायम निधाय तम प्रणेम, भूई पृथ्वी पर कायम निधाय, अपने शरीर को पृथ्वी पर गिरा करके तम प्रणेम प्रणाम, मतलब सष्टांग प्रणाम, यह अर्थ है। भूई का अर्थ है वहां जल, जल के ऊपर ही सो करके प्रणाम की, ये प्रणाम की विधि है। यह प्रणाम वैदिक संस्कृति में है। हम लोग जब कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो कायम भुवि निधाय, शरीर को मस्तक पर रखे ऐसा जमीन पर रखते हैं शरीर को, यह प्रणाम की विधि है पहले से। तो भुवि पृथ्वी पर कायम निधाय अपने शरीर को रखकर तम प्रणेम मतलब कृष्णम प्रणेम, कृष्ण को प्रणाम किया। सबसे पहली भक्ति यही है प्रणाम। एक भक्त तो अर्थ किए हैं गीता भगवान जब कहते हैं मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्ते, तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं मन मना मुझमें मान लगाओ। तो मान लीजिए अर्जुन एक कहे सामान्य जी के बिहार में भी मन अपने बस में थोड़े है कि आपने लगा दिया जाए, मन चंचल है बहुत कठिन है आपने मन लगाना। तो भगवान कहते हैं ठीक है तो मेरा भक्त बनो, मन नहीं लगता है तो कुछ श्रवण कीर्तन करो मेरे विषय में मेरी सेवा करो। तो ये भी बहुत कठिन है, इंद्रियां बस में नहीं है कि आपकी भक्ति करेंगी जप करेंगी अर्थ में। तो कहते तो मद्दाय जी ठीक है मेरी पूजा करो कुछ। कहते हैं कि हमारा स्वभाव हो गया है सर परिवार की सेवा करना और करना, आपकी पूजा हो नहीं सकती। तो भगवान कहता माम नमस्ते तो मुझे प्रणाम करो, अब इतना भी नहीं करोगे तो अब क्या किया जाए, तो कुछ नहीं होता तो चलो प्रणाम करो माम नमस्कार। ये बहुत बड़े टीकाकार गीता में टीका लिखे हैं। भगवान कहते हैं कि भक्ति कम से कम भक्ति है और शुरुआत की भक्ति है प्रणाम करना, और कोई कुछ भी भक्ति न कर सके तो प्रणाम तो कर सकता है ना। भगवान के मंदिर में आए प्रणाम किए, या घर पर ठाकुर जी को रखे हैं प्रणाम किए, बच्चा भी प्रणाम करता है तो जानता नहीं कृष्ण की महिमा को लेकिन माथा झुकाओ तो पगे लगता है और माथा झुकाता है। हम लोगों की बहुत सुंदर संस्कृति है इस विषय में, वास्तव में जितने भी वैदिक बहुवचन में है जैसे सत्यम परम भीम है, तो ये बहुवचन में है हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, मैं करता हूं ये भाव नहीं है। तो हमेशा गुरु अपने शिष्यों के साथ, पिता अपने पुत्रों के साथ, पत्नी के साथ, पति और बच्चों के साथ भगवान की शरण ले रहा है। तो हम लोगों में बहुत सुंदर परंपरा है, मन जाते हैं तो अपने परिवार के साथ जाते हैं। कोई कोई बच्चा पेट गोद में नहीं से रहता है, माता जी कहते सबको प्रणाम करो प्रणाम करो। हमने गिरिराज परिक्रमा में देखा है कि बच्चे परिक्रमा करते रहते हैं, गर्भ है माता को वो भी परिक्रमा करती है, और गर्भस्थ शिशु अज्ञात रूप से परिक्रमा कर लेता है कार्य नहीं, लेकिन किसी भाग्य से वो ऐसी मां प्राप्त किया है। और जगह कुछ ऐसे लोग हैं जो परिवार के साथ भजन नहीं करते हैं, अकेले नमाज अदा करते हैं परिवार से उनका कोई मतलब नहीं होता। हम लोग ऐसे नहीं करते, परिवार के साथ भजन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। यहाँ भी नाग पर कृष्ण को प्रणाम की तो बच्चों को भी कहीं प्रणाम करने के लिए कि पिता को मार रहे थे और बच्चे जब प्रणाम किए होंगे तो क्यों नहीं छोड़ देंगे उसको, छोड़ो सारा मर जाएगा, इसी का जन्माया हुआ एक बेटे हैं इतने, भगवान को दया सहज आ जाएगी ये उपाय है। तो सबसे पहली भक्ति है भगवान को प्रणाम करना, प्रणाम की आदत होनी चाहिए। हमने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं जो कल कभी मंदिर में ही जाते हैं तो उनका केवल इतना थोड़ा सा झुकता है, ऐसे करते हैं लगता है जैसे टाइट इस्पात का बना हुआ शरीर टूट जाएगा झुकेगा ना अरे एक दिन जल जाएगा, रात को जाएगा, एक गड्ढा में जाएगा, मरेगा। इसको भगवान के सामने झुकाना चाहिए, वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, ये झुकाने के लिए है शरीर। तो जमीन पर शरीर को रख करके भूवि निधाय शब्द है, निधाय नितरण धाय रख करके प्रणाम किए और इस तरह से भगवान से कहने लगे। अब नाग पत्नियों का उद्गार है, बहुत सुंदर बात कह रही है भगवान कृष्ण के विषय में। श्रीमद् भागवत में कई स्तुतियां हैं भगवान कृष्ण की, उन समस्त स्तुतियों में इस स्तुति का एक विलक्षण महत्व है। वैष्णव लोग इसको बहुत पसंद है, इस तरह से बोल रहे हैं। नान्य उचुः न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिष तवावतारः खलनिग्रहाय रिपानाम पितुल्य दृष्टेः एदमं फलमेव अनुशंसन। प्रथमं तावत् कुपितं दानमोदनेन उपशमयन्तः स्तुवन्ति न्याय इति। तो सबसे पहले कुपित भगवान को सामने के लिए उनके दंड का अनुमोदन कर रही है। जैसे कोई बहुत बलवान व्यक्ति किसी को मार रहा हो तो उसको कह दो ये उल्टी कर रहे हो तो और मारेगा। तो इसलिए यही पहला उपाय है कि ये कहा जाए कि आप जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और वास्तव में ये तो नीति है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ है नाग पत्नियां कह रही हैं वो प्रतिशत सत्य कह रही है। तो भगवान दंड दिए हैं उनके पति को काली को, तो उसका भी अनुमोदन कर रही हैं, उसको अच्छा कह रहे हैं। लेकिन पति को मुक्त करने करना कराना ही उद्देश्य है, भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए कर रहे। भगवान क्रोध में नहीं थे, लेकिन लगता था जैसे वो मार रहे हैं तो क्रोध में मार रहे हैं। कहती हैं कृत किल्बिषे अस्मिन, कृत किल्बिषानी, जिसने किल्बिष किया है, अपराध किया है, किसका? गरुड़ जी का, श्री जमुना जी का, वृंदावन का, और वृंदावन में और जमुना में रहने वाले जी का इसने अपराध किया है, आपका अपराध किया है। किल्बिष का, हमारे पति ने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो ये हुए अस्मिन, इस सर्प पर दंड दिया है, न्याय ही न्याय है, उचित, यह उचित है, आपने बिल्कुल ठीक किया। नाग पत्नियां यहां जो कुछ भी बोल रही हैं अपने हृदय के बिल्कुल स्वच्छ भावों को व्यक्त कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि भीतर से वे भगवान में दोष दृष्टि रखें और बाहर से कहें कि आपने ठीक किया है, ये किया है, वो किया है। तो बिल्कुल उचित है, क्योंकि इसने अपराध किया है, तो आप दंड जो वह न्याय है, उचित। न्याय शब्द का अर्थ होता है यथेष्ट व्यवहार। यदि आपने हमें कुछ दिया है तो हम उसी वस्तु के लगभग आपको वस्तु लौटाते हैं, तो इसको न्याय कहेंगे, तो न्याय कहेंगे। यदि किसी ने अपराध किया, गलती किया, तो उसकी गलती के अनुसार उसको ताड़ना दिया जाए, दंड दिया जाए, तो ये न्याय है। जैसे न्याय शब्द भारत में बहुत सूत है, न्यायालय सभी जानते हैं, कोर्ट को न्यायालय कहा जाता है, वो न्याय का घर है। और न्याय क्या है कि किया है तो उसको उसके अनुसार दंड देना न्याय है, न्यायालय है। तो आज के न्यायालय में तो भले अन्याय हो रहा हो, लेकिन फिर भी टोटल मिला करके देखा जाए तो 90% न्याय ही होता है इस युग में भी देखा जाता है। हम लोग देखे हैं ऐसे बहुत से लोग जो अपराध किए हैं तो उनको दंड मिल गया है प्राय, तो उसको न्याय कहते हैं। तो आपने जो कुछ किया उचित न्याय किया। रितो सुतानाम अपितुल्य दृष्टे, हे प्रभु आप शत्रु के प्रति और अपने पुत्र के प्रति दू के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। कभी कभी मनुष्य अपने पुत्र भी दंड देने में वह पुत्र को शत्रु मानकर दंड नहीं देता है, उसका हित करने के लिए दंड देता है। तो आपने काली को, हमारे पति को जो दंड दिया है, इसका हित करने के लिए दंड दिया है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अब दंड हो गया, अब इसकी जान मत मार, जीवित रहेगा तभी आप भजन करेगा। तो इतना तक ठीक हुआ। और हम जानते हैं कि रिपोह सुताना, शत्रु के पुत्र हो उनको भी आप समान समझते हैं, अपने पुत्र के समान, अथवा शत्रु में और अपने पुत्र में आपका कोई भेद नहीं है, ऐसा आप अवतार लिए। तव अवतार खल निग्रहाय, आपका जो अवतार हुआ है, प्राकट्य हुआ है, अपने अकाउंट से जो आप आए हैं, तो इसमें आपका एक उद्देश्य है खल निग्रह है, और ये खल जो है इस जगत में वो भी आपके पुत्र हैं, जीव हैं, तो उनका हित करने के लिए आप अवतार लेते हैं, सज्जनों की रक्षा करके उनका हित करते हैं, खल का दमन करके हित करते हैं, तो हित आपका अवतार हुआ है। तो कालिए का आपने इस तरह किया है, फलम एवं अनुशंसन दमन धत् से आप फल करके तब किसी को दंड देते हैं, दंड देने का क्या फल होगा इस पर भगवान विचार कर लेते हैं। तो क्यों दंड देते हैं, परकाद दुख हेतु खलत्व अपसमन पूर्वकम निक सुखदाक्षणम फल। भगवान जब किसी व्यक्ति को दंड देते हैं तो वह नाना विध नरक आदि के दुख से मुक्त हो जाता है यहां दंड देने पर। यहां तक शास्त्र कहता है कि राजा यदि किसी को दंड दे, किसी अपराधी को, तो वह अपराधी नरक में नहीं जाता है, वह स्वर्ग में जाता है। जैसे राजा किसी को यहां फांसी पर चढ़ा दे, दंड दे, तो वह नरक में नहीं जाता है। इसीलिए राजा को उपदेश है भगवान का कि अपराधियों को दंड दो। आज के युग में लोग ऐसा नहीं मानते, एक छोड़ दो, तो जो छोड़ दिया जाता है वो नरक में दुख भोगता है कई गुना, कई तो नरक आदि दुख से बच जाता है, लत्व का नाश होता है भगवान दंड देते हैं तो। और इसके साथ ही साथ नित्य परम सुख का दान करते हैं भगवान, अपना धाम देते हैं, यह है फल। भगवान बहुत सोच समझ करके दंड देते हैं, जिसको दंड दूंगा तो नरक में नहीं जाने भोगेगा और हमारे धाम में जाएगा, परम सुख प्राप्त करेगा। तो दो फल हुआ, दुख से बच जाना और करना, यही फल है ना। तो भगवान फलम अनुशंसन आलोचन, फल पर विचार करके दंड देते हैं। तो आपने इस समय भी जो कालिए को दंड दिया, हमारे पति को दंड दिया है, तो इनका दुख दूर करने के लिए और परम सुख के लिए आपने दंड दिया है। इसलिए आपके इस दंड दान के समय हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है प्रभु, आपने जो कुछ किया है उचित क्रिया किया है। इस तरह से दंड को दंड मान करके लेकिन न्याय कह रहे हैं, और अब दूसरे श्लोक में यह कह रहे हैं कि यह दंड है ही नहीं, ये तो अनुग्रह है। पहले श्लोक में दंड को दंड के रूप में मान, ऐसा कह रहे हैं कि आप हित करने के लिए दंड दिए हैं, ये न्याय किए हैं, क्योंकि आपका अवतार खल को शुद्ध करने के लिए होता है, दंड देकर शुद्ध करने के लिए होता है। जैसे आदमी अपने पुत्र को दंड देता है उसी तरह जीवों को दंड देते हैं, क्योंकि कृष्ण तो सबके पिता है। आपने देखा होगा कभी कभी पिता अपने पुत्र को दंड थप्पड़ भी मारता है और तरह का दंड देता है, लेकिन उसमें उसका स्नेह ही दंड के रूप में व्यक्त होता है। वो इसलिए दंड देता है कि हमारा पुत्र शुद्ध हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी पुत्र पर कोई क्रोधित हो पिता, तो उसके कान के पास गाल पर इधर उधर नहीं मारना चाहिए। भारतवर्ष में लोग बहुत पीट देते हैं हम बच्चे को इस तरह से। ऐसा लिखा गया है कि छाती में भगवान का निवास है, धर्म का निवास, पीठ पर अधर्म रहते हैं, तो बच्चा कोई गलती करे तो उसके पीठ पर दो चार तमाचा मार सकते हैं, क्योंकि वहां धर्म रहता है। लेकिन इधर उधर नहीं, आंख के पास, कान के पास नहीं मारना चाहिए। मैंने सुना, मैं पर साल एक जगह था एक घर में, तो एक लड़का मेरे साथ आता था भजन करने, एक दिन नहीं आया। मैं कहा क्यों नहीं आया, तो वो सीधा कहा कि कोई जगाया नहीं। तो मैं कहा तुमको जगाने के लिए कोई नियुक्त रहेगा नौकर, तुम जगे क्यों नहीं। तो मैं उसका कान पकड़ लिया ऐसे थोड़ा सा, वो 13-14 वर्ष का लड़का, इसे कान पकड़ा और हम मारने जा रहा था, तो प्रेम से स्नेह बस मारने जा रहा था, द्रोह से नहीं। तब तक उसका एक संबंधी देख लिया और कहा कि अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं शिकायत कर दिया पुलिस आदि के पास तो दंड मिल जाएगा, आप ऐसा काम मत कीजिए अमेरिका में। तो मैं छोड़ दिया। इसने बताया कि यहाँ पर माता पिता भी अपने बच्चे को मार नहीं सकते, ऐसा है ना। अरे लेकिन ये भारतीय कल्चर ऐसा है, बच्चा क्या भगवान आकर के गलती करता है उसको ही मारा जाता है, माता जसोदा उसको उखाड़ कर बांध दी है कि नहीं। जब बेटा है तो भगवान हो चाहे कोई हो तो मारा ही जाएगा। पर अजीब अजीब इस देश का नियम है कि कभी अपने बच्चे को दंड नहीं दे सकते जो कुछ भी तो गंगा जी ले जाते थे या घाट पर पानी ऊंची उलीच देते थे, लोग गिर जाते थे, कपड़ा घंटों घंटों सुखाया करते थे। कुछ लोगों ने जाकर शिकायत किया, सचिव माता थे जगन्नाथ मिश्र थे चैतन्य महाप्रभु के पिताजी से, कि तुम्हारा बेटा इतना बदमाश है, ये किया वो किया, गंगा के घाट पर उद्धम करता है, ऐसा करता है ऐसा। कई वर्षी में एक दिन छड़ी लेकर के जगन्नाथ मिश्र मारने चले निमल को, आज उसको पीटूंगा इतना बदमाश करता है। तो दूसरे लोग समझाने लगे, नहीं नहीं मिश्र जी ऐसा विचार मत कीजिए, जानते नहीं हो कौन है, उन्हें पीछे कौन है, अरे वो साक्षात भगवान है, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, वो लीला करते हैं, आप उनको मारिए मत, प्रसाद कृष्ण है, नारायण है, भगवान है। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं नारायण है तो इससे क्या, इस समय तो मेरा बेटा है, मैं तो मार नारायण जहाँ है वहां रहे, इस समय तो हमारा पुत्र है तो हमारा धर्म है उसको शिक्षा देना, उसको सही रास्ता पर लाना। तो वास्तव में भगवान सबके स्वामी हैं, और वे यदि किसी को मारते हैं, यहां तक कि जान से भी मारते हैं, तो उसमें उनकी करुणा ही कारण है, उस जीव को करके अपने धाम में भेज देते हैं। तो कालिये का जो दमन की, इसमें भगवान की करुणा ही काम कर रहे थे, तो उसको दंड न मान करके अनुग्रह कह रहे हैं कि आपने दंड दिया ही नहीं, अनुग्रह किया है। अनुग्रहोऽयं भवता कृतः दंडो सतां ते खलु कर्म शापः, यद्दण्डशोकत्वमुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनुग्रह एव सम्मतः। भवता आपके द्वारा प्रति ही निश्चितम दंड, आपने जो दंड दिया है, दंड के रूप में प्रतीत हो रहा है वास्तव में, लेकिन दंड नहीं है, यह क्या है, अयम अनुग्रह है, ये तो अनुग्रह है। अनुग्रह का अर्थ होता है जब किसी को हम अनुकूल भाव से ग्रह पकड़ते हैं, उसको अनुकूल अनुग्रह कहा जाता, अपना समझ करके जिसको हम प्यार देते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको अनुग्रह कहा जाता है। तो कालिये को तो आपने अनुग्रह दिया, वास्तव में दंड नहीं दिया, इसको सिद्ध कर रहे कि वह वास्तव में आपका स्नेह है, आपकी कृपा है, क्योंकि आप जो देते हैं या दंड देते हैं तो उस दंड से असताम कलमस आप है। जिनकी आदत बिगड़ गई है, जो दुष्ट हो गए हैं इस संसार में, प्राचीन विविध है, तो आप जब दंड देते हैं तो उस पाप उस दंड से उनके समस्त पापों का शोधन हो जाता है, शोधन हो जाता है, तो वह तो कृपा हुई कि आप पाप दूर कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, जैसे सद्वैद्य, यहां उदाहरण में लिखा गया है, सद्वैद्य का अर्थ है अच्छा डॉक्टर। सद्वैद्य किसी रोगी की चिकित्सा करता है, अगर सर्जरी करता है, कुछ करता है, उसके पेट को फाड़ता है, शुद्ध करता है, तो इस डॉक्टर का स्नेह कारण है, वह उसको ठीक करने के लिए कर रहा है, हारने के लिए नहीं है ना, उसको दुख नहीं दे रहा है, वास्तव में दंड नहीं हो तो अनुग्रह। कभी कभी बच्चे के शरीर में घाव हो जाता है तो माता जी ले जाती है डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, और बच्चा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन माता जी उसके घाव को ठीक करने के लिए वो कटवा देती है, नवाब निकलवाती है। तो इस तरह से देखने में भले ही आपको लग रहा है, लेकिन हे कृष्ण, इसके द्वारा जीव की शुद्धि हो जाती है, वो अपने स्वरूप में आ जाता है, सुखी हो जाता है, इसलिए वास्तव में आपका अनुग्रह है। जिस पाप के चलते विविध शरीर में भ्रमण करता हुआ यह जीव सर्प योनि में आया है, यह इसके कर्मों का फल है। तो यहां ये कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर में भी आपका अनुग्रह प्राप्त करना कठिन है, फिर सर्प शरीर में कोई आपका अनुग्रह कैसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहां देखा जा रहा है कि आप अपना से आप चरण रज को, चरण कमल को ला करके स्वयं अर्पित किए, जिस चरण रज को पाने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, आज तक उनको नहीं मिल रहा है, और उस चरण को लाकर सांप के मस्तक पर अर्पित किए, स्वयं कूदे थे जमुना तह में। गोपियां भी कहती हैं फणी फणा अर्पितम ते पदायन भुजा, फणी के फण पर आपने अर्पित किया अपना चरण कमल, तो हमारे अस्तन पर अर्पण करने में आपको क्या हर्ज है। ये इस तरह से भगवान से विनय कर रही। वास्तव में काली पर भगवान ने जो कृपा किया ये अद्भुत कृपा है। वो कोई भजन नहीं करता, उसके चलते तो सारे जीव दुखी थे, फिर भी कृष्ण उसके पास गए और अपना चरण अर्पित किए। जो चरण बड़े बड़े योगियों के ध्यान भी नहीं आ पाते हैं, उन चरणों को साक्षात ले जाकर उसके सिर पर अर्पित करना, यह बहुत बड़ा अनुग्रह है। और काली इस तरह से हो गए, आज कृष्ण को कभी पाते काली कृष्ण, काली काला कृष्ण नहीं हुआ, काली नाग और कृष्ण, काली दमन कृष्ण, कई तरह से काली का नाम जुड़ा हुआ है भगवान कृष्ण के साथ। तो वे कहते हैं कि जब जिस पाप के चलते अमुष्य देहिना दंग सुखत्वम सत्य जुलित्व, जीव को देही कहा जाता है इस संसार में, लेकिन अपराकृत जगत में वो देही नहीं होता है। देही का अर्थ है देह वाला। इस प्राकृत जगत में जीव को एक देह दिया जाता है, प्राकृत देह, तो उसको, लेकिन अप्राकृत जगत में देही या देह में अंतर नहीं होता है। देही शब्द वहां चलेगा नहीं, क्योंकि देह वाला वहां नहीं रहता है, वो मूर्त देह है, वो स्पिरिट रहता है, जीव रहता है। लेकिन इस जगत में आत्मा को विविध देह मिलता है अपने कर्म के अनुसार, कभी वो वृक्ष बनता है, कभी शरीर प्राप्त करता है, कभी देवता बनता है। जब बहुत अधिक पाप होता है तो सर्प योनि आदि की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। वृक्ष योनि या सर्प योनि ये भयावह योनि है, जिसमें जीव और पाप करता है, भयानक स्वभाव प्राप्त हो। तो जिस पाप के चलते इस जीव को सर्प योनि मिले, उस पाप को, उस कलमस को आपने दूर कर दिया, लगता है कि आप क्रोध करें हैं, लेकिन क्रोध अनुग्रह है। वो समय तो आपका जो क्रोध है वो अनुग्रह ही है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ताड़ना दे, डांट, तो उसका स्नेह ही है, स्नेह में क्रोध में भी क्रोध बन करके आता है। और जैसे लोक में हम लोग सुनते हैं और देखते भी हैं कि कोई प्रिया को अपने पति से वो रूठ जाए और उसने गाली दे पति को, तो वास्तव प्रेम होता है वही मान के रूप में क्रोध में होता है। ऐसा नहीं कि वो क्रोध करके चल दे किस करने के लिए, पति मना लेता है कुछ ही देर में वो खत्म हो जाता है, लेकिन क्रोध में और प्रेम में दोनों में अंतर नहीं होता। इस तरह क्रोध राधा की रहती है, कृष्ण का अधिक समय मनाने में ही बीतता है। इसको मान लीला कहते हैं। लेकिन राधा रानी अकूल भाव से कृष्ण सेवा करें चाहे मान करें, दोनों एक ही वस्तु है, दोनों में भेद नहीं है। तो इसी तरह सिर्फ क्रोध दिखा रहे हो किसी जीव के प्रति, तो उनके क्रोध में या किसी से हंस करके बात कर रहे हो, दोनों में भेद नहीं है। कृष्ण आपसे ट्रूथ है, वास्तव में उनमें ही परिवर्तन नहीं, तो सब कुछ उनका ही है, क्रोध हो चाहे अनुग्रह हो कुछ भी हो। तो इसीलिए क्रोध अनुग्रह एवं सहमता, आपका क्रोध भी अनुग्रह ही, यही भगवान की विशेषता है। वास्तव में भगवान के द्वारा का अहित हो ही नहीं सकता है। शास्त्र ऐसा कहता है कि भगवान अगर कि मैं किसी का अहित करूं तो हो ही नहीं सकता उनसे, या भगवान कभी ये सोचें कि अपनी शरण में हम किसी को न आने दें, तो इस बात के लिए भगवान लाचार है, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। व्यक्ति में तो वर्णन किया है, जैसे श्री भगवान रात का दर्शन करना चाहें तो उनके भाग्य में नहीं लिखा गया है, जहां जाए वहां करोड़ों योजन तक प्रकाश होगा, तो उससे भगवान के भाग्य नहीं गया है कि किसी को शरण में नहीं रख सकते, नहीं है उनका अपार वैभव, उनमें कृपा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। नक्ष तक केवल कृपा है, आनंद स्नेह है। कभी कभी क्रोध लीला भी करते हैं तो वास्तव में कालिए के चलना, वास्तव में काली का बहुत बड़ा भाग्य है, जिसको भगवान के डायरेक्ट चिन्मय शरीर का, श्री विग्रह का स्पर्श मिल रहा है, सिर पर श्रेष्ठ अंग पर कर रहे हैं, ये अनुग्रह। और उसका सरपट भी, उसकी जो क्रूरता थी वो भी चली गई। देखो बाद में अब ये कह रहे हैं कि इस पीछे क्या कारण हो सकता, हमने तो जीवन भर कोई तप नहीं किया है, जब से इसके साथ हैं तब से तो ये खलता ही कर रहा है। वे सोच रहे हैं कि क्या पुण्य किया, किससे सुकृत के बल पर इसने आपको प्राप्त किया। उस वाक्य वो कह रही है, तपः सुतपम् किमनेन पूर्वम् निरारमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया तो भवान् स्तुष्यति सर्वजीवः। पूर्व पुण्य काम करती हैं लेकिन फिर भी अनुमान नहीं कर पाती हैं, कभी निरस्त मानेन मानदेन च अनेन पूर्वम किम तपः सुतप्तम्। निश्चित ही हमारा पति पूर्व गर्व होकर अन्य किसी मान की आशा नहीं रखा होगा, निरस्त मान होगा, अमानी रहा होगा, और इसके साथ ही साथ मान अन्य सबको मान दिया होगा, इसीलिए आपका शरण कमल प्राप्त किया है। यह गुण है स्वयं भगवान को पाने के लिए, अमाना मान देना। किसी भी कारण से मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो सोचता है तो वह अगर मान प्राप्ति की बात सोचता है तो मान इसलिए उठता है कि शारीरिक पद और धन के कारण, लेकिन जीव का शारीरिक और पद से कोई संबंध नहीं है। आज कोई ऊंची जाति में जन्म लिया है लेकिन कल हो सकता है बहुत निकृष्ट जाति में उसका जन्म हो जाए, भिक्ष आदि में हो जा सकता है, पशु पक्षी में भी जन्म हो सकता है। आज बहुत पढ़ा लिखा है, कल ऐसी स्थिति आएगी वो बहुत निकृष्ट बुद्धा बन जाएगा। तो जो लोग मान चाहते हैं, जिसके हृदय में लालसा जगी रहती है होना चाहिए, हमारा सम्मान चाहिए, वो सम्मान के लिए ललायक रहते हैं, उस दशा में भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति का मूल है तो कारण है आकांक्षा। जब तो लालसा संसार के सम्मान की है तो भगवान के प्रेम की भक्ति की लालसा एक साथ नहीं उठेगी। तो पहला गुण व्यक्ति में होना चाहिए कि वह अमानी होना चाहिए, इसको निरस्त मान कर दे, सिर्फ रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं, तो मिल करके करेगा क्या, जीव को से मिले क्या लाभ होगा उसको। कहा गया है भागवत बच्चे की तरह निरस्त मान रहना चाहिए, बच्चा है उसकी आप खूब संसा कीजिए तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं, समझेगा भी नहीं, छोटा सा बच्चा है उसको आप कहे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले तो वो बेचारा खुश नहीं होगा कि हमको बहुत भारी वैष्णव कहा जा रहा है ना, वो समझता ही नहीं ये क्या बात है। तो इस तरह से चाहे अपमान मिले या मान मिले, सम व्यक्ति रहे तो बहुत बड़ा माना गया है। भगवान गीता में बार बार कहे तथा मान अपमान, मान और अपमान में सम रहना चाहिए, और ये ऐसी दुनिया है कि अपमान भी सब जगह मिलेगा, मान सब जगह नहीं मिल सकता है, ज्यादा संभावना है अपमान की। तो ऐसे ऐसे स्थान मिलते हैं कि आप खड़े रहिए दो चार घंटा कौन कहता है ना, तो कहीं कहीं ऐसा स्थान मिलता है कि आपको ऊंचा आसन दिया जाता है और दूसरे कहा जाता है बैठे बैठे, तो वो बैठते नहीं, वो नीचे बैठे, शिष्य लोग मिलते हैं तो नीचे बैठते हैं, गुरु जी को आसन ऊंचा दिए, और कभी कभी उसी गुरु को घंटों खड़ा रहना पड़ता है, गया है दैनिक जीवन में सब फेस करना पड़ता है। फिर उससे हुआ क्या, अगर बहुत ऊंचा आसन मिल गया बैठने का तो उसे आत्मा को लाभ क्या हुआ, खड़ा रहने को मिला तो हानि क्या हुई, कुछ भी हानि नहीं हुई वास्तव, ऊंचा आसन से कोई ऊंचा नहीं हुआ। एक संस्कृत के श्लोक में लिखा गया है कि गरुण जी किसी पर्वत के नीचे हो और एक कौवा सुमेरु पर्वत के शिखर पर बैठा हो तो कौवा कौवा ही है कि नहीं, उस मेरु पर्वत के शिखर पर बैठने से कौवा गरुण नहीं हो जाएगा, और गरुण जी उस पर्वत के चरण में नीचे बैठे हैं फिर भी गरुण जी गरुण जी। क्या होगा जीव का वास्तव में, संसार के सम्मान और असम्मान से उसका कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये निश्चित अनुमान कर रही हैं, नर पत्नी है कि हमारा पति पहले निरस्त मान रह करके सबको मान दिया होगा और इस अवस्था में रह करके इसने निश्चित ही बहुत सुंदर तप किया होगा। क्या तप किया होगा हम नहीं समझ पाते हैं। फिर वे ये बात कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोई कितना भी तप करे इतना बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के चरण की प्राप्ति ये तप से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तप एक कारण है भगवत प्राप्ति में, इसीलिए स्वयं स्वीकार करके और काट रही। कहते किम तपह से तप्तम, इसमें कौन सा महान तप अच्छी तरह से किया था, सुतप्तम सुष्ठु तप्तम कृतम। पता नहीं हमारे पति ने कौन सा महान तप किया था जिससे आज श्री कृष्ण को पाया। तो तप में अर्थात भक्ति में दो गुण होना चाहिए, अमानिना मान देना, ये निरस्त मान और मानद। मानद भक्त का गुण होता है दूसरों को सत्कार देता ही रहता है, देता ही रहता है, ये भक्त का स्वभाव होता है। बहुत सावधान रहना चाहिए इस विषय में, मान देना ही चाहिए। आजकल लोग पूछा करते हैं वो प्रणाम करने योग्य है उसको किया जाए, वो कर दोगे तो हानि क्या होगी, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, तुमको तो कुछ आशीर्वाद ही मिलेगा, है कि नहीं। जिसको प्रणाम किया जाता है उसका खर्च होता है, उसे आशीर्वाद खर्च करना पड़ता है, ये सत्य है, लेकिन जो प्रणाम करता है वो हमेशा लाभ में रहता है। ये सिद्धांत है, इसको मानना चाहिए वास्तव में। तो आज के युग में इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इतना भेदभाव है कि देवता तक को प्रणाम करने के लिए मना है, नहीं है प्रणाम। मान दे नहीं सकते तुम, देवता तक को मान नहीं दोगे तुम और लोगों को क्या मान दे सकते। जो सब तरह से संसारिक स्थिति से हीन है उनको भी मान देना चाहिए, फिर देवता आदि को तो मान देने में कहना ही क्या, वो तो डिजर्व करते हैं, वो तो योग्य है वास्तव में सत्कार करने योग्य। तो माता पिता को मान देना, गुरु को मान देना, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को मान देना, अपने से श्रेष्ठ को तो मान देना ही है, जो श्रेष्ठ नहीं है उनको भी मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। महात्मा लोग इस विषय में एक कथा कहा करते हैं कि एक बार जंगल में एक राजा मंत्री और उसका नौकर तीनों गए और तीनों का संग छूट गया। तो रास्ता पूछते पूछते जा रहे थे, एक साधु एक आश्रम में रहते थे तो आगे आगे वो नौकर जा रहा था, तो वो पूछा कि उस साधु से, उस साधु सूरदास थे, तो पूछा कि अरे अंधा इस रास्ते से कोई गया है, तो वो साधु बोले कि नहीं घर से कोई नहीं गया। तब तक फिर मंत्री आए बीच में, वो पूछे कि सूरदास जी इधर से कोई आदमी गया है, तो कहे कि हाँ एक आदमी गए हैं, तो चले गए मंत्री। फिर पीछे से राजा जी आए, तो राजा पूछे सूरदास जी महाराज इधर से कोई आदमी गए हैं, तो सूरदास जी कहे कि जी हाँ आगे आगे आपका सर्वेंट गया, आपका नौकर गया, बीच में आपके मंत्री गए हैं और सरकार इसके बाद आ पाए। तो राजा ने पूछा कि आप उनसे पूछे थे परिचय के लिए हमारे मंत्री हैं या दास हैं, क्या नहीं सरकार पूछे नहीं, हम बोली से समझ गए थे कौन क्या है उनकी बोली से मुझे पहचान में आ गई, वो आपका जो नौकर था वो तो कोई ट्रेंड है नहीं, छोटा आदमी है, वो अंधा कहा तो मैं समझ गया थर्ड क्लास का आदमी, और इसके बाद आपकी मंत्री गए पढ़े लिखे हैं समझदार हैं, उन्होंने सूरदास जी कहा, और इसके बाद आप सूरदास जी महाराज कहे, आपका तो कहना ही नहीं, वंश परंपरा से आप में संस्कार है, ये है वो है, तो मैं वचन से समझ गया। तो बताइए किसी व्यक्ति को जो जगत की दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसको भी हम महाराज कह दें या अच्छा संबोधन करें तो इसमें हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा तो बनेगा। इसको मानद कहते हैं, मान देना चाहिए, सीखना चाहिए वास्तव में। और श्रील प्रभुपाद जी ने चालू किया है इस काम में भक्तों को प्रभु कहना, परस्पर भी एक दूसरे को प्रभु कहते हैं। ऐसे वो जब लिखेगा अपने नाम तो दास लिखेगा, अमुक दास, लेकिन भक्त जब एक दूसरे भक्त को संबोधित करेगा तो प्रभु कहेगा, प्रभु कहेगा। तो इस तरह से प्रभु कहना चाहिए, कहना ही नहीं चाहिए, मानना चाहिए। सिर्फ वो कह देते हैं प्रभु लेकिन मानते नहीं, तो मानना चाहिए व्यवहार में, वचन द्वारा व्यवहार द्वारा सबको आदर देना चाहिए। कोई दीनहीन है, कम पढ़ा लिखा है, विकलांग है, गरीब है, सत्यम से फिर भी उसका आदर करना चाहिए यथा योग्य। बहुत मधुर वचन बोलना, उसका दुख दूर करना, उसको मान देना कहते हैं। और स्वयं मान नहीं चाहिए, मन मिले न मिले संपन्न रहना चाहिए। भागवत में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में से एक समुद्र भी गुरु है और आज भी गुरु है समुद्र है। तो उसे एक शिक्षा ली गई है कि वर्षा काल में हजारों नदियां समुद्र में गिरती हैं लेकिन समुद्र बढ़ता नहीं, और ग्रीष्म काल में उसमें जल नहीं जाता है, नदियां सूख जाती हैं, फिर भी समुद्र घटता नहीं। इसी तरह से एक साधु को चाहिए कि चाहे उसे संसार का भोग मिले, दुनिया का सारा सम्मान मिले, धन मिले, सब मिले, फिर भी वह फूले न, खुश न हो जाए, और कुछ भी न मिले तो सुख न जाए, तो उतना ही सरस रहेगा। ये समुद्र पर विश्वास है ना, देखिए समुद्र अपनी मर्यादा में है, ये निवास चारों तरफ समुद्र में है ना, समुद्र है, लेकिन समुद्र कभी इसको नहीं डुबाया, और छोटी छोटी नदियों का तूफान आपने देखा ही होगा, बाढ़ आती होगी, वो मर्यादा का अतिक्रमण कर देती। उसे बता रहे थे वृंदावन चंद्र जी की इधर खूब बाढ़ आई थी। समुद्र अगर इस तरह से कभी बढ़ जाए तो क्या होगा, तो गया निवार पर रसाता है, लेकिन वो नहीं बढ़ता है। ये महान लोगों का स्वभाव है, वो इस तरह से सम्मान पा करके अपने को बड़ा नहीं मानते हैं और अपमान से सीखते नहीं, वो जो का त्यों रहते हैं, सरस रहते हैं हमेशा हृदय में। तो इस तरह से इस कालिये ने इस भाव को अपनाया होगा निश्चित, अमानी रहा होगा और सबको मान दिया होगा, और इस प्रकार तप किया होगा। कौन तप किया अथवा कौन धर्म किया, धर्मो थवा सर्व जनानुकंपय, हमारे पति ने निश्चित उस धर्म का आश्रय किया होगा जो धर्म सर्व जनानुकंपा से उत्प्रोत। धर्म का अर्थ ही है समस्त जीवों पर दया, जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म है ही नहीं, और उसमें भी किसके प्रति दया, किसके प्रति अनुकंपा, तो सर्वजन अनुकंपा, सर्वजन, सर्वजन केवल मनुष्यों को नहीं कहते, समस्त प्राणियों को सर्वजन के अंदर कहा गया है। तब बताइए जो लोग गाय खाते हैं और कहते हैं हम धर्म मान रहे हैं, वो धर्म है जिसमें कृपा ही नहीं है, अनुकंपा नहीं, दूसरे जीव को दुख को समझने की कोई एबिलिटी नहीं, उसमें धर्म कहा। धर्म के चार चरण हैं भागवत में लिखा गया है, सत्य, दया, तप और शौच, धर्म के चार अंग है। दया और दान को एक में किया गया है, सत्य दया या दान दोनों को एक लेना चाहिए, और तप और शौच ये चार चरण, जब ये चारों नहीं हो कहीं तो वो धर्म हो नहीं सकता। तो दया एक स्तंभ है धर्म का, अंग चार हिस्सा में एक हिस्सा है दया। हमारा वैदिक, हमारी वैदिक संस्कृति तो यह सिखाती है कि समस्त जीवों में भगवान है, समस्त जीवों में भगवान को देख करके प्रणाम करना चाहिए। एक श्लोक में भागवत में लिखा गया है, खम वायु मग्निम सरिलम महिंच ज्योतिष सत्वा ने दिशो द्रुमादि सरित समुद्रास्त हरे शरीरम जत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्य। आकाश को देख करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, वायु, जल, अग्नि, कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि वृक्ष, नदी, समुद्र, जितने भी जीव हैं, सबको देखकर प्रणाम करना चाहिए। भगवान तो भागवत में यहाँ तक कहे हैं उद्धव जी से कि मेरी सत्ता को देख करके स्वपच में, गर्दव में, कुत्ते में भी मेरे मुझको देख करके उसको प्रणाम करना चाहिए, ऐसा लिखते हैं। और लोग हंसे तो हंसने दें अपने स्वजनों को, ऐसा करना चाहिए। तो इसको कहते हैं सर्वजनानुकंपा। निश्चित है हमारे पति ने उस धर्म का आचरण किया होगा, उस भागवत धर्म का, जिसमें समस्त जीवों के दुख सुख को अपने सुख दुख के समान समझा जाता है। इस धर्म का आचरण पहले के लोगों ने किया है, जो सबके दुख को अपना दुख समझते हैं, जैसे महाराज बंती देव। भगवत में वर्णन है कि वे 48 दिन भूखे रह गए थे, उनको कुछ भी खाने को नहीं मिला था। 49वें दिन उनको कुछ खाने को मिला तो अपने परिवार के साथ खाने बैठे थे, शरीर बिल्कुल कांप रहा था भूख से, प्यास से। और अभी वो खाने जा रहे थे तब तक एक ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा कि महाराज मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दीजिए। तो सबने भगवान को देखने वाले रंती देव महाराज उनको भोजन दे दिए कुछ, और बचा हुआ भोजन जब अपने परिवार के लोगों को बांट करके जो ही खाने जा रहे थे, तेन ही एक शूद्र अतिथि उनके पास आए और कहा कि महाराज मुझे बहुत भूख लगी है, यदि आपके पास कुछ हो तो खाने को दीजिए। तो सबने कृष्ण को देखने वाले रंती देव महाराज फिर अपना हिस्सा देने लगे, तो उनके पुत्रों ने, उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं हमारे हिस्सा से भी दीजिए। तो सबके हिस्सा से निकाल निकाल करके उसको खिला दिया, उत्तृप्त होकर के चला गया। उसके बाद एक पुलकस आया, नहीं चंडाल आया, कुत्तों के साथ स्वपच आया। वो आया कहा कि महाराज मैं अपने कुत्तों के साथ भूखा हूं, आपके पास कुछ हो तो दीजिए। जो कुछ भी बचा हुआ था अन्न, अब केवल उसको तृप्त करने भर था, वो सब दे दिए। अब कुछ भी खाने का नहीं बचा, केवल पानी बच गया। वो सब जगह भगवान को देखते थे, सबने भगवान को देखते थे। तो जब वो पानी पीने जा रहे थे तब तक एक पुलकस आया और कहा कि महाराज मैं तो अशुभ जाति का हूं, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, क्या आपके पास पानी है? पानी ऐसे पीने जा रहे थे और वो स्वयं न पी करके उन्होंने यही कहा उस समय भगवान से कि हे प्रभु मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूं, मैं योग सिद्धि नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता हूं, मुझमें ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने में समर्थ बन जाऊं और उनको जो दुख होने वाला है मैं अकेले सबका दुख भोगूं। यही वो वरदान मांगे और पानी दे दिए। पानी पीने जा रहा था और पानी दे दिया, 48 दिन के बाद पानी पीने जा रहे दे दिए। जो ही दिए और ये कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि मैं सभी प्राणियों के भीतर रहूं और उनका दुख मैं अकेले भोगूं, उसी समय जितने लोग ब्राह्मण या स्वपर शुद्ध थे, सप्त देवता थे, भगवान थे, विष्णु भगवान और भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान, सब प्रकट हो गए। कहे कि महाराज हम आपकी परीक्षा लेने के लिए इस रूप में हुए थे, आप वर मांगिए। तो दंती देव महाराज ने कहा कि हम यही बात चाहते हैं कि आपके चरणों में मेरा अनुराग बढ़े और दुनिया में जितना दुख सबको होने वाला है सारा दुख मुझे दीजिए, मैं भोगना चाहता हूं। भगवान अपने भक्त को सब दुख भोगने को क्यों दें? लेकिन इस तरह से दंती देव महाराज ने मांगा, इस तरह का इतिहास बीता है, ये सत्य घटना है। आज तो ऐसी प्रवृत्ति है कि सबका सुख आदमी अकेले भोगना चाहता है और बाकी सब मरे। हमको सुख होना चाहिए ताकि कुछ भी, इसको सर्व जनानुकंपा कहते हैं। धर्म को हमेशा दया से युक्त होना चाहिए। किसी जीव को भगवान की भक्ति देना, प्रचार करना, यह बहुत बड़ी दया है। इसलिए कहो कि दया के कारण अमेरिका में आए थे, नहीं तो उस बुढ़ापा में, उस मरने की दशा में कौन अपने देश छोड़ेगा? दया ने उनके हृदय को प्रेरित किया, दया बस हुए। इस दया से युक्त होना चाहिए। और यह बात भी निश्चित है कि दया या अनुकंपा अपने समान ही सब पर होनी चाहिए। जैसे हम सुखी रहना चाहते हैं नेचुरली भी, वैसे दूसरे जीवों का भी दुख दूर करना चाहिए। को भोजन देना, वस्त्र देना, दवा देना, मधुर व्यसन देना, और भगवान की भक्ति ये मूल है, इसको तो देना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी जीवों के दुख को दूर करने का भाव हमेशा रखना चाहिए। भले हम दूर न कर पाए, लेकिन रंती देव महाराज के समान भाव तो होना चाहिए, है कि नहीं? उनका भाव था कि सबका दुख मैं दूर करूं, और इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान तुष्यति सर्व जीव। भगवान श्री कृष्ण का एक विशेषण है सर्व जीव। सर्व जीव जिसके हैं उसको सर्व जीव कहते हैं। सभी जीव कृष्ण के हैं। कृष्ण समस्त जीवों के जन्मदाता हैं, पालक है, पोषक है। तो जब एक जीव दूसरे जीव से स्नेह करता है, उसके दुख को दूर करना चाहता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे एक परिवार में एक भाई यदि दूसरे भाई के दुख को दूर करता है तो पिता कितने प्रसन्न होंगे, है ना? सहज समझा जा सकता है। मान लीजिए पिता के पांच पुत्र हैं और पांचों पुत्र आपस में बहुत प्रेम करते हैं, और जो समर्थ पुत्र है वह गरीब पुत्र के या दुखी पुत्र के दुख को दूर कर रहा है, अपने भाई के दुख को दूर कर रहा है, तो पिता निश्चित ही प्रसन्न होगा, हाँ ये ठीक है। लेकिन एक भाई अगर दूसरे भाई को दुख देगा तो पिता प्रसन्न नहीं। भगवान चाहते हैं कि सारे सृष्टि में एक जीव दूसरे जीव का हेल्प करे, एक दूसरे को सुख दे। और जब हम दूसरे के दुख को देखकर कांप जाते हैं, दया उत्पन्न होती है, इसको अनुकंपा कहा गया है। अनु मतलब अनुकूल भाव से, हृदय में कंपकंपी होती है, सिहरन होती है, मतलब उसके दुख को दूर करने की भावना उमड़ती है, इसको अनुकंपा कहते हैं। और यह जगत दुखालय है, यहाँ जीव बहुत दुखी है, कई तरह के दुख हैं आजकल। तो ये भाव सदा रहना चाहिए दूसरे के दुख को दूर करने की, तब धर्म धर्म है, नहीं तो धर्म धर्म नहीं। समझ लीजिए हम भोग लगाए महाप्रसाद और खूब खा रहे हैं, और पास में ही कोई जीव प्रसाद नहीं खा रहा हो, भूखा हो, और हम कहें कि नहीं हम तो धर्म का पालन कर रहे हैं, खा रहे हैं जजमान के आटा, जजमान के घी, साबस साबस बाबा जी, हमारे यहाँ कहावत है, तो जजमान का आटा है, जजमान का घी है, बाबा जी खूब खा रहे हैं, पंडित जी खूब खा रहे हैं, खाए ठीक है, लेकिन दूसरे जीव को भी प्रसाद बांटना चाहिए, क्योंकि सब कृष्ण के, उनके कंठ में प्रसाद पहुंचना चाहिए, सबके पास हरिनाम पहुंचना चाहिए, सबके पास पुस्तक पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार से निश्चित ही हमारे पति ने उस धर्म का, भागवत धर्म का आचरण किया होगा जो सर्व जीव दया से युक्त है, और उसी धर्म के अनुष्ठान से आप प्रसन्न होते हैं, और आप प्रसन्न होते हैं तो समस्त जीव प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार नाग पत्नी स्तुति कर रहे हैं, कितना चार तक कथा कहानी थी, एकदम 10 मिनट प्रश्न के लिए रोक रहे हैं, फिर 5 सेकंड करेंगे। हरे कृष्ण प्रश्न है जो भी मंत्र भगवान के नाम से युक्त है, जिनमें भगवान का नाम है, तो वास्तव में उन मंत्रों में कोई भेद नहीं है, समान है। लेकिन अब जपना अपनी उत्कंठा पर निर्भर करता है। कोई भी मंत्र हो उसको प्रेम से जप रहे हैं, अनुराग से जप रहे हैं तो वह सिद्धि देगा। ये क्वालिटी का प्रश्न है वास्तव में। नाम तो सब एक समान है, वो तो जैसा मैं पहले बात कहा कि कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जिनका अर्थ कुछ और होता है, सुनने में लगता है कि इसका अर्थ कुछ और है लेकिन वो भिन्न अर्थ होता है। यदि आप कहा जाए कि विष्णु सहस्त्र नाम तीन बार पढ़ा जाए तो एक राम जपने के बराबर होता है, ये कहा गया है ना, वही विष्णु सहस्त्र नाम के लिए कहा गया। लेकिन उस विष्णु सहस्त्र नाम में स्वयं ही राम शब्द आया हुआ है, उसी में राम शब्द आया हुआ है, अब पढ़कर देखिए। और ये कहा जाएगा तीन बार राम नाम जपने पर एक बार कृष्ण कहने का फल मिलता है, तो फिर इसमें महामंत्र में से राम निकाल देना चाहिए, क्यों घाटा सहेंगे। आखिर बलराम जी कहा है ना राम, विष्णु नाम और कृष्ण नाम और राम नाम में भेद हो गया, भगवत स्वरूपों में और भगवान नामों में इस तरह के भेदभाव की कल्पना ही एक अपराध है, बहुत भारी अपराध हो जाता है। जहां शिव जी के नाम से भेद करना भी अपराध होता है तो वहां भगवान के ही नाम में और भगवान के स्वरूपों में भेद करने कितना बड़ा अपराध है। बहुत से भक्तों ने बहुत से मंत्रों का जप किया है अपनी रुचि के अनुसार, और यदि ये प्रेम से जपे हैं तो उसी से सिद्धि मिल गई, और नहीं ये हरे कृष्ण ही जपे बिना प्रेम के तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे, क्या होगा। प्रेम होना चाहिए रियल प्रेम से। ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किए और भगवान का साक्षात्कार किए, साक्षात दर्शन किए, बातचीत किए, सब कुछ किए। या हम लोग भागवत में पढ़ते हैं ये देवकी वसुदेव तप किए, द्रोण और धरा तप किए, तो इन्होंने कुछ और मंत्रों का जप किया लेकिन कृष्ण को पुत्र के रूप में पा गए। अंततः मंत्र कोई भी हो, वैष्णव मंत्र होना चाहिए, उसके जपने में अपनी निष्ठा अपनी रुचि जैसी हो उसके अनुसार प्रेम से जप करना चाहिए, और दूसरा कोई जप रहा है निष्ठा से जप रहा है तो वो सिद्धि पाएगा। ये असली में इसमें निष्ठा मुख्य है, ऐसा बात नहीं कि मंत्रों में ही बहुत कम या बेसी का हिसाब कर दिया गया है, ये जपेगा तो बहुत फास्ट ले जाएगा, ये जपेगा तो बहुत स्लो, अपने अनुराग पर निर्भर करता है। जय जय श्री कृष्ण कोई जप रहा है, केवल कृष्ण 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 राम 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 प्रेम है तो बहुत जल्दी वो सिद्धि पाएगा। देखते हैं किसी में भी, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हो या श्री कृष्ण शरणम हो जय श्री कृष्ण, कोई भेद नहीं दिए। जहां तक मैं शास्त्रों के अध्ययन से गुरुजनों के प्रवचन से समझा हूं मैं इसी निष्कर्ष पहुंचा, इसी कोई भेद नहीं है। ऐसे यह है कि अपनी अपनी परंपरा में जो मिला हो उसी को जप करना चाहिए, उसी में निष्ठा करनी चाहिए, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति यदि अन्य कर रहा है तो वो ठीक है। जी ये चैतन्य चैतन्य में लिखा गया है कि वीरस दीक्षा पुरस चर्चा आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श से आचंडाले सदारे उद्धार। भगवान के नाम जपने में दीक्षा आदि की अपेक्षा नहीं है, दीक्षा होती है ठीक है, लेकिन यह किसी भी तरह से जिह्वा के स्पर्श मात्र से जीव को शुद्ध करता है, भगवान के नाम में विशेषता। और कुछ मंत्र हैं वो परंपरा से लेना ही चाहिए, लेकिन भगवान के नाम में यह पाबंदी नहीं है, इसके तो श्रवण मात्र से जीव पवित्र हो जाता है, उच्चारण करने पर तो कहना ही नहीं है। जब नाम श्रुति मात्र न पुमान भवत निर्मल, ऐसा शास्त्र कहता है, और कीट पतंग तक तर जाते हैं। इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति सिद्धि चाहता है, उस परम लक्ष्य को पाने चाहता है, तो सब तरह से सुरक्षित रहेगा, वो दीक्षा लेगा और नियम का पालन करेगा, सब करेगा, है ना। अगर उसको उत्कंठा है, जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाना है तो हमारा टिकट बुकिंग है, फिर भी हमारा क्षण करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कई तरह से चिंता रहती है कि सेफ होना चाहिए, तो इस तरह से दीक्षा आदि एक आवश्यक वस्तु है, परंतु भगवान का नाम कैसे भी जपा जाए वो फल देता है, ये नियम है, जपना चाहिए, किसी भी तरह से प्रचार करना चाहिए, परंतु क्विक बहुत जल्दी सिद्धि के लिए और सुरक्षित निश्चित सिद्धि के लिए वैष्णव दीक्षा आदि ग्रहण करना चाहिए। ये तो एटलीस्ट कहा जाता है, कम से कम मनुष्य के पास समय नहीं है, बहुत बिजी है, परिवार के लिए, समाज के लिए, देह के लिए काम करना है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 16 महीने जप करो। उस संख्या का कोई संबंध नहीं है ऐसे, इससे वो ये कहे कि मिनिमम संख्या निश्चित की गई है कि उतना जपना चाहिए, 2 घंटा लगता है, संप्रदाय विहीन स्तु मंत्रास्ते निष्फला मता। देखिए कहीं कहीं शास्त्र में इस तरह के जो शब्द हैं वह खास करके भगवान के नाम आदि मंत्र के लिए नहीं है, मंत्र का अर्थ है कभी कभी परामर्श भी होता है, जैसे आपने सुना होगा मंत्री, मंत्री जो होते हैं वो मंत्र देते हैं राजा को, तो मंत्र का अर्थ नहीं कि कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिए या महामंत्र दिए, वहां मंत्र का अर्थ होता है परामर्श, विचार, फिलॉसफी, जो संप्रदाय विहीन मत है वे सब निष्फल है, उसका अर्थ ये हुआ। अब समझ रहे हैं ना, जो कई तरह के कंसेप्शन है लोगों का और देते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, तो जो संप्रदाय विहीन इस तरह के प्रचार है, मत है, वो सब विफल है। और कुछ ऐसे मंत्र भी जिनका सही अर्थ में मंत्र अर्थ किया जाता है, वो भी अगर संप्रदाय से न लिया जाए, जहां तहां किताब में पढ़ करके और बिना मतलब के इधर उधर से लिया जाए, तो वो भी निष्फल है। परंतु भगवान नाम में यह नियम लागू नहीं, भगवान का नाम तो शुद्ध करता है जी, सुनने मात्र। परंतु मैं शुरू में ही कहा कि अगर कोई बहुत जल्दी सिद्धि पाना चाहता है सब तरह से, तो उसको सब तरह से दीक्षा आदि से युक्त होना चाहिए। इस संप्रदाय विहीन यह मंत्र से निष्फला मत, और जिस प्रसंग में वो बात कही गई है तो वह मंत्र जो जपा जाता है उसके लिए वो बात नहीं कही गई है, उस समय प्रसंग चल रहा है तो ये बात बताई गई है कि जो लोग अपना मत स्थापित करते हैं, संप्रदाय में नहीं है किसी और अपना मत चालू कर दिए, वो सब बेकार है, निष्फल, पता नहीं किसमें है लेकिन है शास्त्र का ही बात, शास्त्र हित करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि उसका अर्थ समझना चाहिए, उसके भाव समझ करके जी स्कूल में जो संस्कृत किताब होती है, लेकिन है शास्त्रीय बात। वैसे तो गुरु के लिए नहीं, माता के लिए कहा गया है कि मातृ देवो भव, माता ही भगवान है, पिता ही भगवान है, राजा भगवान है, राजा को नरदेव कहा जाता है, भगवान का अंश माना जाता है, तो उभाव होता है उसका, उसमें कुछ शक्ति है भगवान की, भगवान जैसा आदर करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सब भगवान नहीं हो गए रियल।
जीव के
ओरिजिन
आत्मा भगवान के नाम में क्या
और ना आगे भगवान के इस विषय में शास्त्र कोई खास बात कह नहीं रहा है और वास्तव में और हमारे इस संस्था में इस विषय पर कुछ कोई अभी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हुआ है। मैं समाज में कुछ कह भी नहीं सकता। व्यक्तिगत बैठेंगे तो हम लोग बात कर सकते। मेरे पास एक किताब है भक्ति विनोद ठाकुर जी का, उन्होंने लिखा है कि जीव इस प्राकृत जगत का उत्पादन नहीं है और वैकुंठ का भी नहीं है। वो लिखते हैं मार्जिनल शब्द लिखते हैं कि वहां का है और फॉरेन शब्दों पर जो करते हैं लेकिन वहां से था इस तरह की। वो मेरे पास है विष्णु भक्ति वाला ठाकुर ने लिखा है।
स्तुति करना चाहिए तो कौन से कोई पॉलिटिक को स्तुति करना चाहिए?
जी हाँ, कुछ स्तुतियाँ हैं ऐसे जिसमें भगवान के गुण नाम आदि लिखे गए हैं। जैसे हम लोग सवेरे दर्शन करते हैं तो ब्रह्मा जी के शब्दों में गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि बोलते हैं। भगवान नृसिंह की स्तुति करते हैं तो पहले जयदेव कवि ने लिखा है वो और भी पुराणों में है उस लिखते हैं नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादान। तो इसी तरह से अपने भाव के अनुसार बहुत सी स्तुतियां हैं। कोई बहुत प्रेम से भगवान से कुछ कहना चाहता है तो गोपी गीत के द्वारा भी बोल सकता है, लेकिन होना चाहिए उसका इंडिविजुअल। अपने घर में हो चाहे मंदिर में हो, और समाज के लिए तो निश्चित है सवेरे ये गाया जाएगा, गुरुवस्तक गाया जाएगा, गुरु पूजा गाया जाएगी, ये गाया जाएगा, लेकिन कभी कभी इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रेम में स्तुतियां भी कर सकते हैं अपने भाव के अनुसार। बहुत स्तुति है भागवत में, जैसा भी कर रहे हैं स्तुति नागपत्नी, और बहुत सुंदर स्तुति है।
तीन बार करने सुबह दोपहर शाम को, दोपहर को शाम को अलग अलग है कोई स्तुति है? सुबह के साथ में करते हैं दोपहर को कोई स्तुति और शाम को?
कुछ ऐसा आचार्य ने कहा, जैसे गुरु अष्टक है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रचा हुआ है, वो कहते हैं कि प्रातः काल इसको कोई गाता है तो उसे राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। उसको लिखते हैं। अब संध्या आरती है, और संध्या आरती चैतन्य महाप्रभु के भोर में गाने तो ठीक नहीं लगेगा, इसका नाम ही है संध्या आरती। इस तरह कुछ तो है काल का विभाजन, काल के अनुसार राग भी होता है, बातें भी बोली जाती हैं, स्तुति की जाती है। शाम के समय कोई गाने लगे जागिए गोपाल लाल तो भोर में ठीक लगे, शाम को तो उनको सुलाने वाला गीत चाहिए। प्रार्थना अपने भाव के अनुसार होनी चाहिए। मान लीजिए हम दीन भाव से किसी दुख से आर्त हैं और अपने दुख दूर करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अब भिन्न तरह की प्रार्थना होगी। जैसे गजेंद्र ये द्रौपदी ने जैसे प्रार्थना किया वो उस आर्तभाव से, केवल विरह की अनुभूति हो रही हो तो गोपी गीत आदि से प्रार्थना की जा सकती है। कुछ भिन्न भिन्न तरह की प्रार्थना, भगवान के ऐश्वर्य का भाव उदित हो रहा हो तो उस समय प्रहलाद महाराज की स्तुति से स्तुति कर सकते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति से। स्तुति और प्रार्थना दोनों एक ही है। स्तुति में विशेषता भगवान के गुणों का वर्णन अधिक होता है, प्रार्थना में अपनी मांग बार बार कही जाती है। इसमें ये अंतर है।
क्या करना अच्छा है, स्तुति करना अच्छा है, प्रार्थना करना है?
दोनों एक समान है। हाँ, गोपियां तो ज्यादा प्रार्थना ही कर रहे हैं कृष्ण से, कि चार प्रार्थना है गोपी गीत में। आप अपना सुंदर मुख दिखाइए, आप अपना करकमल हमारे सिर पर रखिए, आप अपना चरण हमारे स्तन पर रखिए, और एक है अपनी मधुर बोली सुनाइए। ये चार प्रार्थना है, चार प्रार्थना 19 श्लोकों में व्यक्त की गई। वो स्तुति नहीं है किसी, बल्कि उसमें तो गाली भी दे रही है, अरे कपटी तुम ऐसी बात करते हो, हंस करते हो कि तो रोती है कि आपके चरणों में कांटे चुभते होंगे, ये करते होंगे, वो करते हैं। वो स्तुति नहीं, वो गीत है जी। हाँ तो वही वही मैं कहा ना कि व्यक्तिगत रूप से इसको गाया जा सकता है, जो लौकिक है ही नहीं तो अलौकिक है, इसलिए उसको न स्तुति कहा गया न प्रार्थना कहा गया, वो तो गीत है। तो गीत जी मैं समझा नहीं,
मेरी प्रार्थना है
हाँ
लौकिक चीज की मांगने की।
ओ हाँ अच्छा, लौकिक वस्तु मांगने की, लेकिन अगर अपने मन में लौकिक कामना है तो भगवान से मांगा जा सकता है। जैसे पुत्र के मन में अगर कोई कामना है तो माता पिता से मांगने में कोई हर्ज नहीं है, दूसरे से नहीं मांगे, लेकिन अपने माता पिता से मांग सकता है। लेकिन जब और अधिक अधिक शुद्ध होता जाता है जीव, तो भगवान से इस तरह की मांग नहीं रखता, बल्कि भगवान देते हैं तब भी नहीं लेता। प्रहलाद महाराज से भगवान ने कहा कि वर मांगो, उन्होंने कहा कि आप यह वर दीजिए कि हमारे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। लेकिन लास्ट में वो भी मांगे कि हमारे पिताजी को तार दीजिए, वो अपराध किए हैं, ये किए। तो ये भक्ति में उन्नति होने पर कामनाएं अपने आप चली जाती हैं, भगवत प्रेम की कामना रह जाती है। हाँ तो खुद ही एक प्रसंग आता तब न, वृंदावन में कथा होने वाली है राष्ट्रपंच अध्याय पर इस वर्ष,
क्योंकि
मेरा भगवत
तो वहां तक नहीं पहुंचेगा ना,
गोपी गीत तक नहीं, अभी तो बहुत कम पहुंचेगा। मैं बेलू गीत तक पहुंचाऊंगा और लीला संक्षेप में कह करके बेणु गीत तक पहुंचा। तो ठीक है, इसको फिर बचना है ना, बीच में कुछ इंटरवल दे दिया जाए 5 बजे तक। हरे कृष्ण।